देखिए, जब भी हम किसी बीमारी या मेडिकल डायग्नोसिस की बात करते हैं ना, तो हमारे मन में एक तरह की सटीकता की उम्मीद होती है।
हाँ, मतलब हमें लगता है कि सब कुछ एकदम स्पष्ट होगा।
बिल्कुल बिल्कुल, किसी मशीन या इंजीनियरिंग की तरह। जैसे मान लीजिए, अगर किसी के हाथ की हड्डी टूट जाए, तो एक्सरे में वो टूटी हुई सफेद लाइन एकदम साफ दिख जाती है,
एकदम साफ।
और डॉक्टर बस उसकी तरफ इशारा करके कहता है कि देखिए, ये रही दिक्कत।
हाँ, और इसे ऐसे प्लास्टर बांधकर ठीक किया जा सकता है।
मतलब ये बहुत ही सीधा और स्पष्ट मामला होता है।
ये एक ऐसी स्थिति होती है जहाँ सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट है, या तो हड्डी टूटी है या नहीं टूटी है। हम इंसानों को ना इस तरह की स्पष्टता बहुत पसंद आती है।
सही कहा, ये स्पष्टता हमें बहुत सुकून देती है। हम चाहते हैं कि चीजें साफ साफ दिखाई दें, उन्हें आसानी से अलग अलग खानों में बांटा जा सके। हम चाहते हैं कि हर समस्या का एक स्पष्ट भौतिक कारण हो, जिसे हम अपनी आंखों से देख सके।
लेकिन यहीं पर मामला उलझ जाता है।
वो कैसे?
क्योंकि जब हम प्राचीन ग्रंथों, धर्मशास्त्र और मानव स्वभाव भी अथाह गहराइयों में उतरते हैं, तो अचानक वो एक्सरे मशीन काम करना बंद कर देती है। हम एक ऐसे परिदृश्य में पहुंच जाते हैं जो बहुत ही धुंधला, प्रतीकात्मक और जटिल है। वहां चीजें वैसी नहीं होती जैसी सतह पर नजर आती हैं।
अच्छा, और आज के इस विस्तृत विश्लेषण में हम कुछ ऐसे ही रहस्यमयी परिदृश्य को समझने की कोशिश करेंगे। आज हम इतिहास की उन दो सबसे मशहूर पेड़ों की बात कर रहे हैं जिन्होंने इंसानी स्वभाव की और शायद हमारी पूरी सभ्यता की दिशा तय कर दी।
बिल्कुल, और ये बहुत ही गहरा विषय है।
तो सवाल यह है कि क्या उन पेड़ों में सचमुच कोई जादुई शक्तियां थीं, या फिर वे किसी बहुत गहरे मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक सच्चाई की तरफ इशारा कर रहे थे? इस विषय की तह तक जाने के लिए हम रॉबर्ट वेनोय के ओल्ड टेस्टामेंट हिस्ट्री के लेक्चर 9 की मदद ले रहे हैं।
हाँ, इस स्रोत में जेनेसिस यानी उत्पत्ति की किताब के दूसरे अध्याय का बेहद बारीकी से विवरण दिया गया है।
सही बात है, और हमारा आज का मिशन अदन के बगीचे या ईडन गार्डन के उन दो पेड़ों के इर्द गिर्द घूमता है। पहला है जीवन का पेड़ और दूसरा है अच्छे और बुरे के ज्ञान का पेड़। ठीक है, चलिए इसके हर पहलू को खोलकर देखते हैं।
चलिए शुरू करते हैं।
हमें यह समझना है कि इन पेड़ों का वास्तविक अर्थ क्या था, और सबसे बड़ी बात, इंसान के स्वभाव और उसकी आजादी से इनका क्या गहरा संबंध है।
यहाँ जो बात सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है वो ये है कि ये चर्चा सिर्फ प्राचीन इतिहास की किसी मिथकीय घटना का विश्लेषण नहीं है।
तो फिर ये क्या है?
ये असल में इस बात की खोज है कि ज्ञान, नैतिकता और मानवीय स्वतंत्रता का मूल आधार क्या है। जब हम इन पेड़ों के फल, भगवान के आदेश और इंसान की बगावत की बात करते हैं, तो हम वास्तव में इस बात पर चर्चा कर रहे होते हैं कि इंसान होने का असली मतलब क्या है,
और हम हर दिन अपने जीवन में कैसे चुनाव करते हैं, राइट?
बिल्कुल, यही इस पूरी चर्चा का केंद्र है।
तो अगर हमारी एक्सरे मशीन यहाँ काम नहीं करती, तो हमें इन प्रतीकों को डिकोड करना होगा। शुरुआत उस पेड़ से करते हैं जो स्रोत सामग्री के अनुसार बगीचे के ठीक बीचों बीच था, जीवन का पेड़।
जीवन का पेड़।
अब जब कोई पहली बार जीवन का पेड़ सुनता है ना, तो दिमाग में सबसे पहले किसी जादुई जड़ी बूटी या किसी ऐसे रहस्यमयी फल की छवि बनती है जिसे खाने से इंसान तुरंत अमर हो जाए।
हाँ, जैसे किसी वीडियो गेम में होता है।
एकदम सही, जैसे किसी वीडियो गेम में कोई हेल्थ क्वेश्चन पीने से लाइफ बढ़ जाती है, या किसी फैंटेसी फिल्म में अमृत पीने से कोई कभी बूढ़ा नहीं होता। तो क्या लेक्चर में इसका यही शाब्दिक और भौतिक मतलब बताया गया है?
देखिए, ये एक बहुत ही आम धारणा है और सदियों से लोग इसे इसी तरह देखते आए हैं। लेकिन अगर हम जॉन कैल्विन जैसे महान सुधारवादी विद्वानों के दृष्टिकोण को देखें, जिन पर हमारे स्रोत में काफी चर्चा की गई है, तो तस्वीर पूरी तरह बदल जाती है।
अच्छा, कैल्विन का क्या मानना था?
कैल्विन का बहुत स्पष्ट मानना था कि इस पेड़ के फल में कोई रासायनिक या जैविक गुण नहीं थे जो इंसान की कोशिकाओं को अमर बना दे। उसमें कोई जादुई विटामिन या तत्व नहीं था।
मतलब कोई जादू नहीं था?
नहीं, कोई जादू नहीं। इसके बजाय कैल्विन इसे एक संस्कारात्मक प्रतीक मानते हैं। इसे ऐसे समझिए कि यह पेड़ भगवान के साथ जीवन, उनकी सहभागिता और उन पर पूरी निर्भरता का एक बाहरी दृश्यमान प्रतीक था।
एक मिनट, ये बात मुझे ओल्ड टेस्टामेंट के सैमसन की याद दिला रही है।
सैमसन की कहानी?
हाँ, मतलब सैमसन की कहानी में हमने देखा है कि उसकी वो विशाल शारीरिक ताकत असल में उसके बालों के अंदर किसी केमिकल या जादुई रूप में मौजूद नहीं थी।
बिल्कुल सही।
बाल तो सिर्फ भगवान के साथ उसके वादे का, उसके नाजरी होने के व्रत का एक प्रतीक थे, और जब वो प्रतीक छिन गया,
यानी जब उसके बाल कट गए।
हाँ, जब उसके बाल कट गए और उसने वो वादा तोड़ दिया, तो असली ताकत भी अपने आप चली गई, क्योंकि ताकत भगवान से आ रही थी, बालों से नहीं। तो क्या इस जीवन के पेड़ का मामला भी ठीक वैसा ही था?
ये बहुत ही सटीक तुलना है। कहानी का मर्म बिल्कुल यही है। पेड़ में या उसके फल में अपने आप में कोई जीवन देने वाली स्वतंत्र शक्ति नहीं थी।
तो फिर उस पेड़ का क्या महत्व था?
भगवान ने अपनी कृपा से उस पेड़ को ये अर्थ और ये महत्व दिया था। जब तक इंसान भगवान की आज्ञा मान रहा था और उस रिश्ते में बना हुआ था, वो उस पेड़ के फल खाकर भगवान के साथ अपने उस गहरे जुड़ाव का जश्न मना सकता था। वो पेड़ एक तरह से उस रिश्ते की मोहर था।
बहुत खूब, ये तो एकदम नजरिया ही बदल देता है।
हाँ, हालांकि स्रोत ये भी बताता है कि इस बिंदु पर विद्वानों में एक बहुत ही रोचक वैचारिक मतभेद है।
वो क्या?
केल्विन का मानना था कि पतन से पहले आदम नियमित रूप से इस पेड़ का फल खाता था, क्योंकि ये उसके और भगवान के बीच के रिश्ते को रोज नया करने जैसा था।
अच्छा, तो वो उसे रोज खाता था?
केल्विन के हिसाब से हाँ, लेकिन एक अन्य महत्वपूर्ण धर्मशास्त्री गेहार्डिस वोस का नजरिया इससे अलग है।
वोस क्या कहते हैं?
उनका मानना है कि इंसान ने पतन से पहले कभी उस पेड़ का फल खाया ही नहीं, और पाप करने के बाद उसे बगीचे से निकाल दिया गया ताकि वो उस तक पहुंच ना सके।
ये मतभेद अपने आप में बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करता है। एक ही स्रोत में दो ऐसे विद्वान हैं जो घटना को अलग नजरिए से देख रहे हैं, लेकिन दोनों इस बुनियादी बात पर पूरी तरह सहमत हैं कि पेड़ कोई जादुई वस्तु नहीं था।
बिल्कुल, जादू वाली बात को दोनों खारिज करते हैं।
अब आपने जो संस्कारात्मक प्रतीक शब्द इस्तेमाल किया, जिसे अंग्रेजी में सैक्रमेंट कहते हैं, इसके बारे में थोड़ा और गहराई से बात करना जरूरी है।
हाँ, क्योंकि इसे लेकर बहुत सी गलत फहमियां हैं।
एकदम, धर्मशास्त्र और आम धारणाओं में इस शब्द को लेकर बहुत सी भ्रांतियां फैली हुई हैं।
ये एक बहुत ही अहम बिंदु है। धर्मशास्त्र के लंबे इतिहास में, खासकर मध्यकाल के दौरान, सैक्रमेंट शब्द को कई बार बहुत ही यांत्रिक या जादुई तरीके से देखा और समझाया गया है।
यांत्रिक तरीके से मतलब क्या?
लैटिन में एक बहुत ही प्रसिद्ध वाक्यांश है, एक्स ओपेरे ऑपराटो। इसका सरल अर्थ ये है कि कृत्य के संपन्न होने मात्र से ही अनुग्रह प्राप्त हो जाता है।
अच्छा,
यानी बस एक धार्मिक रस्म निभा लो और उसका जादुई असर अपने आप हो जाएगा, चाहे रस्म निभाने वाले के मन में श्रद्धा हो या ना हो।
तो ये कुछ ऐसा है जैसे कोई बटन दबाने से मशीन चालू हो जाती है, मशीन इस बात की परवाह नहीं करती कि बटन कौन दबा रहा है।
एकदम सही।
मतलब जैसे कोई व्यक्ति बिना किसी विश्वास या श्रद्धा के बस गले में कोई ताबीज पहन ले और सोचे कि अब जादू काम करेगा और वो हर मुसीबत से बच जाएगा।
बिल्कुल वही मानसिकता।
लेकिन वेनॉय के लेक्चर में स्पष्ट किया गया है कि सुधारवादी दृष्टिकोण इसके सख्त खिलाफ है ना?
एकदम सही पकड़ा। सुधारवादी विचार इस यांत्रिक जादू की धारणा को सिरे से खारिज करता है। वेनॉय ने अपने लेक्चर में वेस्टमिंस्टर शॉर्टर कैटेकिज्म का हवाला दिया है, जो इस अवधारणा को बहुत खूबसूरती से स्पष्ट करता है।
तो कैटेकिज्म क्या कहता है?
इसके अनुसार सैक्रामेंट किसी अदृश्य कृपा का एक बाहरी दिखाई देने वाला प्रतीक है। ये एक पवित्र नियम है जिसे भगवान ने स्थापित किया है, लेकिन यह तब तक काम नहीं करता जब तक कि इसे ग्रहण करने वाले के भीतर विश्वास और भगवान के प्रति आज्ञाकारिता न हो।
मतलब सिर्फ रस्म निभाने से कुछ नहीं होता।
बिल्कुल, जादू इंसान को ब्रह्मांड की शक्तियों पर नियंत्रण करने का भ्रम देता है, जबकि सैक्रामेंट इंसान को भगवान की कृपा पर निर्भर होना सिखाता है।
यहाँ आकर यह विषय वाकई बेहद दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि अगर जीवन का पेड़ कोई जादुई फल नहीं था, बल्कि भगवान के साथ रिश्ते का और उन पर निर्भरता का प्रतीक था, और आदम हव्वा ने गलती की जिसके कारण उन्हें उस बगीचे से बाहर निकाल दिया गया।
हाँ, उन्हें निर्वासित कर दिया गया था।
तो क्या उस जीवन के पेड़ की कहानी हमेशा के लिए वहीं उसी बंद दरवाजे के पीछे खत्म हो गई? क्या इंसान हमेशा के लिए उस आध्यात्मिक जुड़ाव से वंचित हो गया?
देखिए, अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़कर देखें तो हमें पूरी बाइबल के एक बहुत ही शानदार कथा प्रवाह का दर्शन होता है। बाइबल की संरचना अपने आप में एक बहुत बड़ा और संतोषजनक जवाब है।
वो कैसे?
देखिए, बाइबल की शुरुआत जेनेसिस की किताब में एक स्वर्ग यानी ईडन गार्डन से होती है। वहाँ ये जीवन का पेड़ मौजूद है। इंसान अपनी बगावत के कारण इसे खो देता है और एक तरह से निर्वासित हो जाता है।
पहला अध्याय।
लेकिन ये निर्वासन कहानी का अंत नहीं है। पूरी बाइबल उस खोए हुए घर की ओर लौटने की यात्रा है, और इसका अंत रेवलेशन यानी प्रकाशित वाक्य की किताब में होता है, जो फिर से एक स्वर्ग का, एक न्यू यरूशलम का वर्णन करती है।
और वहाँ क्या होता है?
और जो बात सबसे ज्यादा रोमांचित करने वाली है वो ये है कि रेवलेशन 2:7 और 22:2 में ये जीवन का पेड़ वापस आ जाता है, ये अंतिम पन्नों में फिर से खड़ा दिखाई देता है।
अरे वाह, तो जो चीज पहले पन्नों में इंसान के हाथ से फिसल गई थी वो हजारों पन्नों के संघर्ष और ऐतिहासिक यात्रा के बाद आखिरी पन्नों में वापस मिल जाती है। ये एक बेहतरीन साहित्यिक और आध्यात्मिक वृत्त है जो पूरा होता है।
बिल्कुल, और ये वापसी बिना किसी कीमत के नहीं होती।
मतलब
रेवलेशन में बहुत स्पष्ट रूप से लिखा है कि उस पेड़ तक दोबारा पहुंचने का अधिकार हर किसी को नहीं मिलता। ये अधिकार केवल उन्हें मिलता है जिन्होंने अपने वस्त्रों को मेमने के रक्त में, यानी ईसा मसीह के बलिदान के रक्त में धोया है।
तो इसका क्या अर्थ है?
इसका सीधा सा मतलब ये है कि जो संबंध इंसान के अपने अहंकार, उसकी स्वार्थपरता और पाप के कारण जेनेसिस में टूट गया था, उसे फिर से जोड़ने का रास्ता केवल क्षमा और बलिदान के माध्यम से ही खुलता है।
बहुत ही गहरी बात है।
हाँ, जीवन का पेड़ फिर से उसी शाश्वत जीवन और भगवान के साथ सहभागिता का अंतिम और स्थायी प्रतीक बन जाता है।
ये सचमुच एक बहुत ही खूबसूरत और गहरी कहानी है। शुरुआत से लेकर अंत तक एक ऐसा धागा जुड़ा हुआ है जो इंसान की सबसे गहरी लालसाओं को संबोधित करता है।
एकदम।
लेकिन अगर पहला पेड़ भगवान से जुड़े रहने का रास्ता था, तो ठीक उसी के पास मौजूद उस दूसरे पेड़ का क्या काम था जिसने उस पूरे रिश्ते को ही तोड़ दिया?
आप ज्ञान के पेड़ की बात कर रहे हैं?
हाँ, हम बात कर रहे हैं अच्छे और बुरे के ज्ञान के पेड़ की। जेनेसिस 2:17 में भगवान बहुत सख्त चेतावनी देते हैं कि तुम इसका फल मत खाना वरना तुम मर जाओगे।
हाँ, ये चेतावनी बहुत स्पष्ट थी।
अब अगर मैं किसी सस्पेंस थ्रिलर के पाठक की तरह सोचूं, तो मुझे लगेगा कि उस फल में जरूर कोई खतरनाक जहर होगा, साइनाइड जैसा कुछ जिसे खाते ही इंसान की जान चली जाए। तो क्या वो सचमुच एक जहरीला सेब था?
ये सवाल अक्सर लोगों के मन में आता है, लेकिन स्रोत सामग्री इस बात को बहुत स्पष्ट रूप से नकारती है।
तो वो जहरीला नहीं था?
नहीं, भगवान ने ये जरूर कहा था कि इसे खाने का परिणाम मृत्यु होगा, लेकिन उन्होंने ये कहीं नहीं कहा कि वो पेड़ अपने आप में जहरीला है या उसके फल में कोई ऐसा रासायनिक तत्व है जो शरीर की कार्यप्रणाली को रोकते हुआ।
तो फिर मृत्यु कैसे आनी थी?
मृत्यु उस फल के भौतिक गुणों के कारण नहीं आनी थी, बल्कि वो भगवान की आज्ञा तोड़ने के नैतिक दंड के स्वरूप आनी थी। इस पूरी अवधारणा को सही परिप्रेक्ष्य में समझने के लिए श्रोत में एक मिथकीय दृष्टिकोण की चर्चा की गई है, जो ऐतिहासिक रूप से काफी प्रचलित भी रहा है।
मिथकीय दृष्टिकोण, ये क्या है? क्या ये प्राचीन लोक कथाओं से जुड़ा है?
हाँ, इसे कुछ इस तरह समझा जा सकता है। इस दृष्टिकोण के अनुसार ये कहानी वास्तव में प्राचीन बुतपरस्त या पेगन मिथकों से प्रभावित है।
पेगन मिथक?
प्राचीन काल में जो मिथक होते थे उनमें अक्सर ये माना जाता था कि देवता इंसानों से बहुत ईर्ष्या करते थे, वे इंसानों को एक तरह का खतरा मानते थे।
अच्छा, देवता इंसानों से डरते थे?
हाँ, वे चाहते थे कि इंसान जानवरों जैसी आदिम अवस्था में ही रहें, बिना किसी सभ्यता या गहरी सोच के।
समझ रहा हूँ।
देवताओं को डर था कि अगर इंसानों ने अच्छे और बुरे का ज्ञान हासिल कर लिया, यानी अगर वे सभ्य हो गए, उनमें तर्क करने की क्षमता आ गई और उन्होंने नैतिकता को समझ लिया, तो वे देवताओं के बराबर हो जाएंगे।
तो वे इंसानों को अज्ञानी रखना चाहते थे?
बिल्कुल, इसलिए इन मिथकों के अनुसार देवताओं ने इंसानों को उस पेड़ से दूर रखना चाहा ताकि वे अज्ञानी बने रहें। ग्रीक माइथोलॉजी में प्रोमिथियस की कहानी भी कुछ ऐसी ही है, जहां वो देवताओं से आग चुराकर इंसानों को देता है और देवता उसे सजा देते हैं।
एक मिनट, अगर हम जेनेसिस के संदर्भ में इस तर्क को लागू करें तो ये बहुत ही बेतुका लगता है।
बेतुका कैसे?
अगर भगवान इंसानों को सचमुच जानवरी बनाए रखना चाहते थे और उन्हें कोई बौद्धिक ज्ञान नहीं देना चाहते थे, तो उन्होंने वो पेड़ बगीचे के बिल्कुल बीचों बीच लगाया ही क्यों? वो उस पेड़ को कहीं दूर किसी पहाड़ पर छिपा भी तो सकते थे।
ये बहुत ही तार्किक सवाल है।
और दूसरी बात, अगर हम पूरी कहानी को पढ़ें तो जेनेसिस का संदर्भ किसी सभ्यता, विज्ञान या भौतिक ज्ञान के विकास से जुड़ा हुआ नहीं है। ये तो पूरी तरह से एक नैतिक मामला है।
बिल्कुल सही।
ये निर्माता और उसके द्वारा रचे गए इंसान के बीच आज्ञा पालन और विश्वास का मामला है ना?
आपका ये विरोध बिल्कुल उसी दिशा में है जिस दिशा में विद्वान गेरहार्डस वॉस ने सोचा था।
अच्छा, वॉस ने भी यही सोचा?
हाँ, वॉस ने भी ठीक इन्हीं तर्कों के आधार पर इस मिथ्या के दृष्टिकोण की धज्जियां उड़ा दी थीं और इसे पूरी तरह खारिज कर दिया था। वॉस का बहुत मजबूती से ये कहना है कि अच्छे और बुरे के ज्ञान के पेड़ का नाम अपने आप में तटस्थ था।
तटस्थ मतलब ज्ञान कोई बुरी चीज नहीं थी?
बिल्कुल नहीं, ज्ञान प्राप्त करना कोई बुरी बात नहीं थी, और न ही भगवान इंसानों को हमेशा के लिए अज्ञानी रखना चाहते थे। ऐसा कोई ईर्ष्यालु देवता वहाँ नहीं था जो इंसानों के विकास से डरता हो।
तो फिर उस पेड़ का असली मकसद क्या था? अगर ज्ञान कोई बुरी चीज नहीं थी तो इंसान को उसे खाने से मना क्यों किया गया? उसे वहाँ रखने का तुक क्या था?
देखिए, वॉस इस गुत्थी को बहुत ही शानदार तरीके से सुलझाते हैं। उनके अनुसार वह पेड़ इंसान के लिए एक तरह का टेस्ट था, एक परीक्षा की घड़ी थी।
परीक्षा? कैसी परीक्षा?
भगवान इंसान को एक भोली भाली मासूम अवस्था से निकालकर धार्मिक और नैतिक परिपक्वता तक ले जाना चाहते थे। वॉस का तर्क ये है कि इंसान उस नैतिकता के ज्ञान को दो रास्तों में से किसी भी एक रास्ते से हासिल कर सकता था।
वो दो रास्ते कौन से थे?
पहला रास्ता आज्ञा मानने का था। अगर वो उस पेड़ का फल नहीं खाता तो वो सक्रिय रूप से अच्छाई का चुनाव कर रहा होता, और बुराई क्या होती है ये वो भगवान के करीब रहकर सीख जाता।
और दूसरा रास्ता?
दूसरा रास्ता आज्ञा तोड़ने का था, जिससे उसे बुराई का साक्षात और दर्दनाक अनुभव हो जाता। पेड़ सिर्फ एक जरिया था, एक ऐसा चौराहा जहाँ इंसान को अपनी स्वतंत्र इच्छा से चुनाव करना था।
मतलब चुनाव का मौका देना जरूरी था?
एकदम, क्योंकि बिना चुनाव के कोई सच्ची आज्ञाकारिता या सच्चा प्रेम हो ही नहीं सकता।
ये एक बहुत ही गहरी और तार्किक व्याख्या है। आप किसी को रोबोट बनाकर उससे प्यार नहीं पा सकते, उसे चुनाव का मौका देना ही पड़ता है।
बिल्कुल सही बात है।
लेकिन मुझे पता है कि स्रोत में आगे एक और पेच है जो इस पूरी कहानी को एक दार्शनिक ऊंचाई पर ले जाता है। जब आदम और हव्वा वो फल खा लेते हैं तो जेनेसिस 3:22 में भगवान कहते हैं, देखो इंसान हमारे जैसा हो गया है जो अच्छे और बुरे को जानता है।
हाँ, ये आयत बहुत महत्वपूर्ण है।
अब वॉस के इस टेस्ट वाले मॉडल में इस आयत को लेकर एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है।
यही बात तो इस पूरे विषय को जटिल बनाती है। वॉस के सामने ये समस्या थी कि अगर ज्ञान बुरी चीज नहीं थी तो भगवान ने ये क्यों कहा कि इंसान हमारे जैसा हो गया है?
तो वॉस ने इसे कैसे समझाया?
इस समस्या से बचने के लिए वॉस को ये मानना पड़ा कि जेनेसिस 3:22 का ये वाक्य एक व्यंग्य है।
व्यंग मतलब तंज कस रहे थे?
हाँ, वो उसका कहना है कि भगवान सच में ये नहीं कह रहे थे कि इंसान उनके जैसा शक्तिशाली या ज्ञानी हो गया है, बल्कि वे एक तरह का ताना मार रहे थे कि लो बन गए भगवान।
लेकिन अगर ये सिर्फ एक ताना था तो फिर ये पूरी घटना की गंभीरता और उस त्रासदी का वजन ही कम कर देता है।
यही बात कई और विद्वानों को भी खटकी,
और यहीं पर लेक्चरर रॉबर्ट बेनॉय और एक अन्य महान धर्मशास्त्री हरमन बादिंग का दृष्टिकोण सामने आता है, जो मुझे बहुत गहराई तक सोचने पर मजबूर कर देता है। इसे श्रोत में स्वदेवत्व दृष्टिकोण या सेल्फ डिफिकेशन व्यू कहा गया है।
बाविंक और वेनॉय का विश्लेषण इसे एक बिल्कुल नए और खौफनाक स्तर पर ले जाता है। उनका मानना है कि जेनेसिस 3:22 में भगवान कोई व्यंग या ताना नहीं मार रहे थे।
तो वे क्या कह रहे थे?
वे एक बहुत ही भयानक और शाब्दिक सच्चाई बयान कर रहे थे। इंसान सचमुच एक खास और बहुत ही खतरनाक मायने में भगवान जैसा बन गया था।
तो आखिर इन सब का मतलब क्या है? इंसान भगवान जैसा कैसे बन गया?
ये समझने वाली बात है।
मतलब वो तो ब्रह्मांड का रचयिता नहीं है, उसके पास सितारे बनाने की ताकत नहीं है। यहाँ पर हमें इस शब्द ज्ञान की जड़ तक जाना होगा।
बिल्कुल, ज्ञान का असली अर्थ समझना होगा।
हम अपनी आम भाषा में ज्ञान का मतलब सिर्फ नई जानकारी हासिल करने से लेते हैं, जैसे मुझे पता चल गया कि गुरुत्वाकर्षण कैसे काम करता है। लेकिन स्रोत सामग्री में ज्ञान का अर्थ ये नहीं बताया गया है। उन्होंने ड्यूट्रोनॉमी यानी व्यवस्था विवरण 1:39 का एक बहुत ही शानदार उदाहरण दिया है।
हाँ, उस आयत का संदर्भ समझना बहुत जरूरी है।
उसमें क्या है?
उस आयत में छोटे बच्चों के बारे में कहा गया है कि उन्हें अच्छे और बुरे का ज्ञान नहीं है। अब इसका ये मतलब कतई नहीं है कि बच्चों को ये पता नहीं है कि आग में हाथ डालने से वे जल जाएंगे या उन्हें दर्द का एहसास नहीं होता।
तो फिर इसका क्या मतलब है?
इसका गहरा मतलब ये है कि बच्चों के पास अभी वो अधिकार या मानसिक क्षमता नहीं है कि वे खुद तय कर सकें कि दुनिया के लिए क्या सही है और क्या गलत।
अच्छा, वे खुद नियम नहीं बना सकते?
बिल्कुल, वे पूरी तरह से अपने माता पिता के बनाए नैतिक नियमों और उनके द्वारा खींची गई सीमाओं पर निर्भर होते हैं।
और यही वो बिंदु है जहां सारी कड़ियां जुड़ जाती हैं। तो यहां ज्ञान का मतलब कोई नई बौद्धिक जानकारी मिलना नहीं है।
एकदम सही।
इसका मतलब है तय करने या मानदंड स्थापित करने की शक्ति, ये अधिकार कि मैं तय करूंगा कि सही क्या है।
और इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है।
वो क्या?
जब इंसान ने उस ज्ञान के पेड़ का फल खाया तो वो असल में क्या हासिल कर रहा था? बाविन किसे बहुत ही स्पष्ट और डरावनी तरीके से समझाते हैं। वे कहते हैं कि इंसान ने कोई नया IQ लेवल हासिल नहीं किया।
तो उसने क्या हासिल किया?
बल्कि उस कृत्य के जरिए इंसान ने एक दार्शनिक और आध्यात्मिक घोषणा कर दी। उसने कहा, अब से मैं अपने लिए खुद नियम बनाऊंगा।
अब बाप रे।
उसने खुद को अपने जीवन के सिंहासन पर बैठा लिया और खुद को ही अपना भगवान घोषित कर दिया।
यानी उसने ब्रह्मांड के निर्माता की आंखों में देखकर कहा, मुझे ये बताने वाले आप कौन होते हैं कि मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत? मैं खुद तय करूंगा, मेरी इच्छा ही मेरा कानून है।
और यही मानव जाति की सबसे बड़ी त्रासदी है।
सच में?
उसने भगवान के बनाए हुए नैतिक ढांचे को, उस सुरक्षित घेरे को पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया। बाविंग कहते हैं कि ये इंसान की भगवान से पूरी तरह स्वतंत्र होने की, खुद अपने पैरों पर खड़े होने की एक भयानक और अंधी इच्छा थी।
सांप ने भी तो यही कहा था।
हाँ, सांप ने उनसे यही तो वादा किया था कि तुम भगवान जैसे हो जाओगे, और इंसान उस झांसे में आ गया। उसने सोचा कि स्वतंत्रता का मतलब किसी भी सत्ता के अधीन न होना है।
ये तो रोंगटे खड़े कर देने वाला विश्लेषण है। इसका मतलब ये नहीं था कि फल खाने से उनका दिमाग तेज हो गया।
नहीं, बिल्कुल नहीं।
इसका मतलब ये था कि उन्होंने अपनी आज़ादी को ही अपना परम सत्य मान लिया। उन्होंने कहा, हम अपनी कहानी के खुद लेखक बनेंगे, चाहे उसका परिणाम कुछ भी हो।
और सबसे बड़ी जब मना देखें, इंसान ने वो पा भी लिया जो वो चाहता था। वो आज़ाद हो गया।
हाँ, आज़ाद तो हो गया।
उसने अपनी राह खुद चुन ली, लेकिन ये तथाकथित आज़ादी उसे उस सच्ची खुशी और शांति तक नहीं ले जा सकी जिसकी उसे तलाश थी।
क्यों नहीं ले जा सकी?
क्योंकि जिस निर्माता ने उसे अपने साथ रिश्ते में रहने के लिए बनाया था, उससे कटकर वो कभी पूर्ण नहीं हो सकता था। भगवान ने उसे उस पेड़ से दूर इसीलिए रखा था ताकि वो इस झूठी, विनाशकारी और थका देने वाली आजादी के पीछे ना भागे।
तो खुद भगवान बनना एक भ्रम था।
एकदम, क्योंकि खुद अपना भगवान बनना एक ऐसा बोझ है जिससे उठाने के लिए इंसान का ढांचा बना ही नहीं है।
तो अगर हम इन तमाम ऐतिहासिक, धर्मशास्त्रीय और दार्शनिक पहलुओं को समेटें, तो ये बात शीशे की तरह साफ हो जाती है कि ईडन गार्डन के ये दोनों पेड़ कोई इतिहास की किताबों में दबी हुई पुरानी लकड़ियां या बच्चों की कहानियां नहीं है।
बिल्कुल नहीं, ये आज भी प्रासंगिक है।
ये आज भी हमारे सामने खड़े हैं और हमसे सवाल पूछ रहे हैं। पहला, जीवन का पेड़, जो हमें बताता है कि हमारा असली जीवन और हमारी सच्ची शांति भगवान पर निर्भर रहने में, उनके साथ एक विश्वासपूर्ण रिश्ते में जुड़े रहने में है।
हाँ, एक गहरा रिश्ता।
और दूसरा, अच्छे और बुरे के ज्ञान का पेड़, जो उस गहरे मानवीय लालच का प्रतीक है जहां हम खुद अपना भगवान बनना चाहते हैं, हर सीमा को तोड़कर पूरी तरह स्वतंत्र होना चाहते हैं और अपने नियम खुद गढ़ना चाहते हैं।
और अगर हम आज की आधुनिक दुनिया पर, हमारे समाज के ताने बाने पर नजर डालें, तो हम सब इसी असीमित व्यक्तिगत स्वतंत्रता की अंधी दौड़ में भाग रहे हैं।
ये तो है।
आज के समाज का सबसे बड़ा मंत्र यही है कि कोई भी हमें ये न बताए कि हमें कैसे जीना है। हम अपनी सच्चाई खुद बनाएंगे, अपने नियम खुद तय करेंगे।
हर कोई अपना खुद का बॉस बनना चाहता है।
बिल्कुल। तो सोचने वाली बात ये है कि क्या हमारा ये आधुनिक समाज, हमारी ये मौजूदा उन्नत सभ्यता, अनजाने में ही सही हर दिन उसी ज्ञान के पेड़ का फल नहीं खा रही है?
ये एक बहुत ही चुभने वाला सवाल है। हम अक्सर सोचते हैं कि हमने पुराने रीति रिवाजों, पुरानी मान्यताओं और नियमों से खुद को आजाद कर लिया है।
हाँ, हम सोचते हैं कि हम आजाद हो गए,
हम सब अपने जीवन के खुद भगवान बन गए हैं। लेकिन क्या ये पूरी स्वतंत्रता, जिसे हम अपनी सभ्यता की सबसे बड़ी उपलब्धि मानते हैं, वास्तव में एक नए प्रकार की कैद बन गई है?
एक अदृश्य कैद।
एक ऐसी अदृश्य कैद जिसने हमें उस जीवन के पेड़ से, उस सच्ची शांति, उस ठहराव और उस गहरे आध्यात्मिक जुड़ाव से बहुत दूर कर दिया है जिसकी हमारी आत्मा को सबसे ज्यादा जरूरत थी।
ये एक ऐसा गहरा विरोधाभास है जिस पर हमें बहुत शांति से विचार करना चाहिए।
बिल्कुल।
हमारी आधुनिक एक्सरे मशीनें और विज्ञान शायद हमें शरीर की टूटी हड्डियां तो दिखा दें, वे हमें भौतिक दुनिया पर नियंत्रण तो दे दें, लेकिन हमारी आत्मा की जो हड्डी उस पहले बगीचे में टूटी थी, उसका इलाज खुद को ब्रह्मांड का केंद्र मान लेने में नहीं है।
तो उसका इलाज क्या है?
उसका इलाज उस टूटे हुए रिश्ते को स्वीकार करने में और वापस उस निर्भरता की ओर लौटने में है।
हम जब शुरुआत में उस धुंधले डायग्नोसिस की बात कर रहे थे, तो शायद सबसे बड़ा धुंधलापन यही है कि हम अपनी बीमारी को ही अपना इलाज मान बैठे।
बहुत ही गहरी बात कही
हम
आपने।
अपनी मनमानी को ही अपनी मुक्ति समझ रहे हैं। आज के इस गहरे विश्लेषण को हम इसी एक विचार के साथ यहीं छोड़ रहे हैं।
सुनने वालों के लिए ये एक बड़ा सवाल है।
जब हम सब अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में फैसले लेते हैं और जब हम अपनी आजादी का जश्न मनाते हैं और खुद को किसी के प्रति जवाबदेह नहीं मानते, तो हमें एक बार रुककर जरूर सोचना चाहिए, हम अनजाने में किस पेड़ का फल खा रहे हैं। आज के इस डीप डाइव में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।